राम हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवत के प्रातः काल के सत्संग में धारवाड़ में। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद के 14 अध्याय के ऊपर, आइडल फैमिली लाइफ, ग्रस्त जीवन शास्त्रों के अनुसार कैसे बिताना चाहिए, एक प्रमाणिक आइडियल ग्रस्त कैसा अपना जीवन व्यतीत करे, इसकी शिक्षा युधिष्ठिर महाराज के पूछने के ऊपर नारद जी शास्त्रों का सार बता रहे हैं ग्रस्त की जीवन में उतारने के लिए। पहले तो ये बताया साधुओं की संग से जो कुछ भी करे भगवत अर्पण करके करना चाहिए, अपनी अहमता और ममता को सदा के लिए त्यागने का अभ्यास करता रहे। ये शिक्षा साधु संघ से केवल मिलती है। करे सब काम, जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है, यद करोसी यद अस्नासी जहोसी ददासी यत, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ देते हो, जो कुछ लेते हो, करते रहो। तद कुरुष्व मद अर्पणम, सिर्फ एक शब्द कृष्ण अर्पण, इतना कहने का अभ्यास करना चाहिए। जो कुछ भी कर रहे हैं उस करने की शक्ति भी हमको भगवान ने दी है, जो सामग्री है जिसके द्वारा हम काम कर रहे हैं वो भी भगवान के द्वारा ही दी हुई है, हमारी अपनी कुछ है नहीं। हमने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें कोई भी चीज हम अपने साथ तो लाए नहीं थे, कोई हमारी अपनी है तो नहीं। जो कुछ इस प्रकृति के तत्वों को लेके उनसे हम काम चला रहे हैं ये सब भगवान के हैं, हमारे हैं नहीं। इसलिए अच्छा आदमी उसको कहते हैं जिसकी चीज है उसकी इस्तेमाल करे तो उसको धन्यवाद करना चाहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपकी चीज का उपभोग कर रहे हैं कि उपयोग कर रहे हैं। जो ऐसे नहीं करता है उसको चोर भगवद गीता कहती है, वो चोर है। सब कुछ संसार में दिया हुआ भगवान का है, जो भगवान को अर्पण करके नहीं खाता है वो पाप खाता है और चोर है। ये भगवद गीता का एक सरल श्लोक है कि जो कुछ भी हम खाते हैं अन्न पदार्थ ये वो सब, वो तो इस प्रकृति में भगवान की कृपा से उत्पन्न हुआ है। बरसात भगवान करते हैं, देवताओं के द्वारा वर्षा का प्रबंध करते हैं, फिर खेत में अन्न उत्पन्न कर हम तो अंदर डाल देते हैं, कैसे वो उगता है वो भी भगवान की कृपा से। फिर कहते हैं मैं सूर्य मैं चंद्रमा के रूप में सारे वनस्पतियों में रस भरता हूँ, जो आपको रस मिलता है खाने में भोजन के अंदर वो सब मैं चंद्रमा के रूप में रस को भरता हूँ, और फिर आप जो कुछ खाते हैं उसको मैं बैठ के पकाता हूँ आपके पेट के अंदर जठराग्नि के रूप में। अहम वैश्वान रो भूतवा प्राणी नाम देह आश्रित, सबके पेट के अंदर मैं अग्नि के रूप में बैठा हुआ हूँ, जो कुछ आप खाते हो उसको मैं पकाता हूँ। रसोई घर में तो आपके भोजन माता जी पकाती है, लेकिन खाने के बाद पेट में कैसे पकता है? अंदर उस भोजन को आपने तो चावल खाया, दाल खाया, के सांबर खाया, के इडली खाई, के डोसा खाया, के बड़ा खाया, लेकिन अंदर उसको सारे को पकाता कौन है? उसमें से जो खाने के जो जरूरी चीजें हैं उसको रत में मिला देता है, बेकार चीजों को एक तरफ कर देता है, पानी को दूसरे तरफ कर देता है, इतना सारा अंदर काम कौन कर रहा है? किचन की सफाई नहीं करो तो गंदा हो जाता है, लेकिन अंदर इतना सारा काम कौन करता है? अंदर सारे पकाना और फिर सफाई का काम कौन कर रहा है? हर चीज को अपनी जगह पे रख रहा है, भगवान कहता है मैं कर रहा हूं, मैं ये सब काम कर रहा हूं। तो हमको क्या करना चाहिए? ये सब सीखना चाहिए कि हमारे रात को हम सो जाते हैं कौन हमारे दिल को चलाता रहता है, कौन हमारे सांस की गति को चलाता है, हमको तो पता भी नहीं लगता है। भगवान कहता है मैं सांप के हृदय में बैठा हुआ हूँ, ये सारा आपका जो शरीर का काम चल रहा है, ये सब मेरी सत्ता से, मेरी शक्ति से चल रहा है। और सुबह उठने के बाद जो कुछ हम करते हैं भगवान की कृपा से करते हैं, इसलिए उठने से पहले भगवान को याद करना चाहिए कि सारी रात आपने हमारी देखभाल की है, हमको तो पता भी नहीं था, हम आज उठे हैं, ये अच्छा दिन हमारा आपकी सेवा में बीते, ऐसी हमारे ऊपर कृपा कीजिए। उठ के पहले हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, ये नित्य नियम हुआ करता था। पृथ्वी के ऊपर चरण रखने से पहले भी पृथ्वी को प्रणाम करते थे। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब इस संसार के अंदर भगवान की देन है। और ये जब हमको शिक्षा मिलती है साधु से, वैष्णव से, भक्तों से, तो फिर हमको जो कुछ करके फिर एक शब्द ही कहना चाहिए, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, मैं भगवान श्री कृष्ण को ये अर्पण करता हूँ। हमारा जाता कुछ नहीं है, वही प्रसाद घर में बनाते हो, भोजन बनाते हो, जब भगवान के लिए थाली में ले जाकर अर्पण करते हो तो वो भोजन प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद का मतलब भगवान की कृपा, फिर तो वो भगवान की मर्सी और कृपा हो जाती है। तो पेट वैसे भोजन खाएंगे तो पाप खाते हैं, क्योंकि किसी और का है, हम चोरी करके खा रहे हैं। जब वो भगवान को अर्पण करके खाते हैं तो वही प्रसाद हो जाता है, कृपा हो जाती है, और हम भगवान के भक्त कहलाते हैं। एक चोर और एक भक्त इस दुनिया में रहते हैं। चोर वो है जो भगवान की चीज को मनमाने से खाते हैं और भगवान का धन्यवाद तक हाथ जोड़ के नहीं करते हैं। ये तो सदाचार में आता है, कोई बहुत बड़ी धर्म की बात नहीं है। आपके बच्चे को कोई आदमी एक खिलौने या टॉफी कुछ दे दे तो भी आप उसको बोलते हो बाबा अंकल को थैंक यू बोल के, बेटा ऐसे बोलते हो ना कि बच्चा अंकल को थैंक यू बोलो। ये भी तो दुनिया में छोटी सी सदाचार है। तो इतना सब भगवान को ले रहे हैं, हाथ जोड़ के थैंक यू उसको नहीं कर सकते, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना भी नहीं कर सकता। जो ये नहीं करता है वो निश्चित रूप से इस संसार के अंदर पाप खा रहा है और चोर है। ये तो अब कितने लोग इस दुनिया के अंदर पाप खा रहे हैं और चोर हैं, और कितने भक्त हैं, बहुत कम लोग। इसलिए बहुत से पुराने बुद्धिमान लोगों के रसोई घर के अंदर ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर, जो कुछ बनेगा भगवान को अर्पण होगा, जो अच्छा लगे ये हमारे ठाकुर जी के लिए ले जा रहे हैं। इस दुनिया में जिससे आप प्रेम करते हो, जो अच्छी चीज लगती है कहते हो ना ये मेरा प्रेमी है उसको मुझे देनी है, दुनिया का ऐसा नहीं है कोई भी अच्छा लगता है तो जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसको ये भेंट दूंगा, ये भाव होता है। तो सबसे ज्यादा प्रेम हमको करना चाहिए भगवान से, और जो अच्छे से अच्छी चीज है वो उसको अर्पण करनी चाहिए। और दूसरा, नारद जी ने कहा कि गृहस्थी को समय, उचित समय, जो भी उसके पास समय बीच में निकलता है काम से, उस वक्त बैठकर भागवत आदि की कथाओं के द्वारा भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनना चाहिए, अवतार कथा को सुनना चाहिए। इस अवतार कथा सुनने से हमको क्या मिलेगा? एक तो भगवान कितनी कृपा करके इस धरती के ऊपर अवतार लेकर आते हैं हमारे उद्धार के लिए, तो हमारा भगवान की तरफ आदर बढ़ेगा कि कितना बड़ा दयालु है। छोटे से बालक प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ऐसा रूप धारण किया, आगे जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी को डांट के कहा नरसिंह देव ने, ऐसे वरदान किसी को मत दिया करो कि हमारे को आधा शेर और आधा आदमी बनना पड़े। ये कौन सा तुमने उसको वरदान दे के मेरे को संकट में डाल दिया? अब तुम्हारी बात की रक्षा भी तो करनी थी ना, अब आदमी भी नहीं मारे, पशु भी नहीं मारे, तो मैं कैसे उसको मारूं? तो ऐसे वरदान भी सोच समझ के देना चाहिए किसी को संकट में था भी अब तो, और प्रहलाद को इतना सारा कष्ट भोगना पड़ गया। तो ये भगवान के अवतार की ऐसी कथाएं पढ़ते हैं तो प्रहलाद की तरह हमारा विश्वास भगवान के ऊपर बढ़ना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ है, हर समय हमारी देखभाल कर रहा है, वो कहीं दूर नहीं है। आंख के ऊपर जो ये आंख की पलक जैसे आंख की रक्षा करती है, उससे भी ज्यादा निकट भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हमारी देखभाल कर रहे हैं। तो भगवान की अवतार कथा से भगवान की दया, करुणा और वात्सल्य, भगवान वात्सल्य भाव एक भगवान का कहते हैं, वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को, गाय के बछड़े का जन्म जन्म होता है ना, तो गाय उस बछड़े को चाट के साफ करती है और बछड़े के ऊपर मलमूत्र लगा होता है, वैसे गाय के खाने के अंदर जो उसका घास देता है उसमें अगर गाय का अपना मूत्र भी होगा तो नहीं खाएगी, छोड़ देगी, खाती नहीं कभी भी। लेकिन अपने बछड़े को चाट के साफ करती है, उसके अंदर कोई भी उसको दुर्गंध नहीं आती है। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे का जब मल मूत्र साफ करती है तो कभी भी किसी माता को नाक के ऊपर कपड़ा रखे हुए नहीं देखा होगा, क्यों? उसको घृणा नहीं होती है उससे, वो अपने बच्चे को साफ करती है प्रेम के कारण। ये जो भाव है इतना, भगवान इससे भी ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल, वो अपने भक्त को वत्स मानता है। जैसे बछड़ा गाय को, जैसे जैसे गाय बछड़े को प्रेम करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त से प्रेम करती है। जहां जहां आपको गाय को जब जंगल में बछड़ा देते हैं तो लाते कैसे हैं घर में पता है? बछड़े को आगे ले जाते हैं, गाय अपने पीछे भागती आती है। अब बछड़े को उठा के जाओगे तो गाय पीछे पीछे भागती हुई आएगी, ये गाय को लाने का तरीका है। तो जहां जहां भक्त जाएगा भगवान उसके पीछे पीछे अपने आप आते रहते हैं, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। तो ये भगवान की जब कथाएं हम सुनेंगे तो हमारा आस्ते आस्ते भगवान का कितना हमसे प्रेम करते हैं इसका अनुभव होगा। जब ये हमारा अनुभव होगा तो फिर हमको दूसरी तरफ दिखेगा कि संसार हमसे, कोई संसार में प्रेम नहीं करता है, संसार में सब हमसे काम निकालना चाहते हैं। जब तक ये शरीर चलता है तब तक लोग सब हमसे प्रेम करते हैं, नहीं तो बूढ़े हमारे घर में जब कोई बुजुर्ग बूढ़ा दादा हो जाता है तो फिर वो हमारे लिए भार लगता है, उसकी सेवा कोई करना नहीं चाहता है। क्यों? अब काम नहीं करता है, काम उसने किया, घर उसने बनाया, दुकान मकान सब उसने बनाए, तुमको पढ़ाया लिखाया उसने, लेकिन जब वो किसी काम का नहीं है तो उसको घर से बाहर बिठा देते हैं और उसको टाइम से देखभाल नहीं करते हैं। दुनिया में जाके देख लेना, दिखता है कि नहीं दिखता है? ऐसे दिखता है, साफ दिखता है दुनिया के अंदर। तो दुनिया के अंदर कोई प्रेम के कारण सेवा नहीं करता है, जितना जिससे लाभ होता है उतनी उसकी सेवा करता है। दुनिया के अंदर व्यवहार जो है ना, व्यापार का व्यवहार लगा हुआ है, जितना दोगे उतना लोगे, जितनी सेवा तुम करोगे उतनी सेवा हम करेंगे। अंग्रेजी में पढ़ा रहा था एक मास्टर, लिखा था फाइंड द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल। तो वो पढ़ा रहा था फाइंड द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल, किसी ने बोला गलत क्यों पढ़ा रहे? बोला 300 रुपया तनख्वाह देते और कैसा पढ़ाऊं? बाकी सब मास्टरों को 3000 मिलती है, हमको 300 देता है, तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो कहने का ये कि इस दुनिया में लोग कोई प्रेम और स्नेह के कारण नहीं पढ़ाते। पुराने जमाने के मास्टर जिनसे हम पढ़ते थे वो घर को अपने घर के तेल जला के बत्ती जला के हमको पढ़ाया करता था और ट्यूशन का पैसा नहीं मांगता था। क्यों? कि मेरा स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी में पहला नंबर आएगा तो लोग कहेंगे अच्छा टीचर है। अपने घर का तेल जला के मुफ्त में हमको पढ़ाता था, हम भी बड़े थे। अब तो पैसे देने के ऊपर भी स्कूल में पढ़ाने को तैयार नहीं है। पहले अभी स्कूल में नहीं पढ़ाता, स्कूल में पढ़ाने के बाद हमको घर में जबरदस्ती पढ़ाते थे, नहीं जाता तो घर में डांटते थे, पैसा भी नहीं लेता था, तेल भी अपना जलाता था। क्यों? तो ये हुआ प्रेम के कारण, स्नेह के कारण। लेकिन थोड़ा सा ये था कि मेरा नाम होगा, मेरे स्टूडेंट से। लेकिन ऐसे ऐसे वातावरण हमने ऐसे लोग देखे, तो प्रेम स्नेह संसार में कोई किसी से नहीं करता है। हम जिसको कहते हैं कि हमारा उससे प्रेम है वो भी एक मोह का दूसरा रूप है। जैसे अर्जुन को भगवत गीता में अर्जुन कहा ये सब मेरे रिश्तेदार है, ये दादा है, मेरा भीष्म पितामह, ये गुरुजी है, मैं इसको कैसे मारूं, मैं ये दया के कारण कर रहा हूं, मेरा इनसे बहुत प्रेम है। भगवान ने कहा तुम्हारा प्रेम नहीं है, तेरे हृदय की दुर्बलता है, ये तेरा मोह है, प्रेम नहीं है। ये प्रेम नहीं है, संसार में प्रेम होता ही नहीं है, केवल काम और मोह होता है। इसलिए एक श्लोक बहुत बड़ा अद्भुत यहां लिखा है कि जिससे हम मोह कर रहे हैं, जिसको हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होता है? कृमि विड़भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छम कलेवरम। कलेवर कहते हैं शरीर को, ये कलेवर है ना, शरीर है, इसको कलेवर कहते हैं संस्कृत में, इसको कलेवर कहते हैं। भगवान जगन्नाथ का हर 12 साल में जब दूसरा बनाते हैं श्री विग्रह तो उसको कहते हैं कलेवर, भगवान का परिवर्तित हो रहा है। जब आषाढ़ मास अधिक मास आता है, हर तीन साल के बाद एक महीना एक्स्ट्रा आता है, उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं जो हमारी गणित में। तो आषाढ़ का जब अधिक मास आएगा उस साल जगन्नाथ का नया विग्रह बनता है, उसको बोलते हैं नव कलेवर। तो कलेवर का मतलब शरीर। ये जो शरीर जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, ये शरीर कैसे क्या है? ये या तो बनेगी कृमि। कृमि का मतलब छोटे छोटे, कभी देखा है कोई जख्म ऐसे होते हैं ना किसी को, उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं। तो कीड़े इस शरीर से बनते हैं। मरे हुए मुर्दे के अंदर कितने कीड़े नजर आते हैं, कृमि कहते हैं कीड़े को। विड़ जो खाएगा इस शरीर को, गीद आदि खाता है तो शरीर क्या उसका मल मूत्र होकर निकलता है, स्टूल। विड़ भस्मी या जलाएगा तो भस्म हो जाएगा। जिसको हम इतना अपना समझ रहे हैं उसका परिणाम मुट्ठी भर राख है, या हम जो समझ रहे हैं कि ये सरल शरीर, हम इतने बड़े दुनिया के काम के हैं, आखिर में एक मुट्ठी भर खाक भी मुश्किल से होता है। तो किससे हम प्रेम कर रहे हैं? प्रभुपाद जी ने पुराने में एक कथा बताई थी कि दुनिया में अटैचमेंट लोग करते हैं, आपने सुना है लिक्विड ब्यूटी कथा? सुनी है लिक्विड ब्यूटी की आप लोगों ने? जैसे आजकल के नौजवान होते हैं, लड़का लड़की आपस में प्रेम करने लगे, लड़का लड़की को बोलता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुमके बगैर रह नहीं सकता हूँ, तुमसे तो विवाह करना ही पड़ेगा मेरे को। लड़की कोई ऐसे शास्त्र पढ़ा हुआ था, वो समझ रही थी ये मूर्ख है, ऐसे ही मेरे को देख के अभी खुश हो रहा है, ये कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, ये मेरी सुंदरता को देख के बड़ा खुश हो रहा है थोड़ी देर के लिए। बोला ठीक है 15 दिन के बाद तुम आ जाना और तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। 15 दिन में लड़की ने दवाई ली जिससे उसको सिर्फ जुलाब होने लगी, लूज मोशन हुए, ऐसी दवाई खाई। और जो लूज मोशन होते हैं वो एक डब्बे के अंदर बंद करके रख दिए। अब 15 दिन में जिस आदमी को लूज मोशन होंगे तो वो बेचारी के गाल अंदर चले गए, आंखें अंदर रह गई, ऐसी बहुत सी दुबली पतली हो गई, बोलना भी थोड़ा सा धीमा हो गया, डिहाइड्रेशन बहुत हो गई। आदमी किसी को बुखार आए और ऐसे लूज मोशन उल्टी हो तो उसका चेहरा देखने में डर लगता है। ये बैठी है घर में, 15 दिन के बाद प्रेमी आया, पूछता है वो हमारी प्रेमिका कहाँ है, हम उससे मिलना चाहते हैं, हमसे वायदा किया था। बोला वो डब्बे में है। बोले डब्बे में कैसे प्रेमी? डब्बे को उठाते दुर्गंध आ रही है, उसमें तो स्टूल पड़ा। बोले क्या मजाक कर रही हो, कहाँ चली गई? बोले यही है। ये कैसे हो सकती है? बोला हाँ यही है, मैं हूं वो जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम मुझसे पूछते हो वो कहां गए, मुझसे तो यही बाहर निकला है और तो कुछ निकला नहीं। इसका मतलब तुम प्रेम मुझसे नहीं करते, मुझसे करते तो मेरे से बात करते ना, तुम कहते वो कहां गई, वो तो ये है, इसमें जितना ही निकला है और तो कुछ था नहीं। तो दुनिया में इस दुनिया का प्रेम जो है असल में वो मिट्टी से प्रेम कर रहे हैं, असली प्रेम नहीं है। ये कहने का इसका अर्थ ये कि असली प्रेम सब भगवान से करना चाहिए, बाकी सब व्यवहार करना चाहिए। प्रेम और व्यवहार में बहुत अंतर है। व्यवहार का मतलब पिता को पिता समझना चाहिए, चाचा को चाचा समझना चाहिए, माँ को माँ समझना चाहिए, बहन को बहन समझना चाहिए, बेटे को बेटा समझना चाहिए, पत्नी को पत्नी समझना चाहिए। तो हरेक से व्यवहार तो करना चाहिए लेकिन प्रेम सिर्फ भगवान से करना चाहिए। दुनिया में किसी से प्रेम करेंगे तो इस दुनिया में प्रेम का परिणाम हमेशा दुख ही मिलता है। इस दुनिया में प्रेम है ही नहीं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं गृहस्थी को, संसार में अपने मर्यादा अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए, सबका जो उचित व्यवहार है वो करना चाहिए। ये मर्यादा भगवान सिखा के गए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए। भगवत गीता में भी लिखा है कि शरीर की तपस्या है, न चाहते हुए भी गुरु का, ब्राह्मण का, भगवान का, माता पिता का आदर करना चाहिए, नहीं चाहते हुए भी करना चाहिए, क्योंकि तपस्या है ये शरीर की। तो यहां आगे कहते हैं नारद मुनि के घर के अंदर रहने वाले पशु पक्षी जो आपके हैं, कीट पतंग भी आपके घर में कोई अगर रहता है तो उसको भी अपने सगे संबंधियों की तरह देखभाल उनकी करनी चाहिए। ये गृहस्थी की बहुत बड़ी एक शिक्षा है गृहस्थी के लिए कि सिर्फ हम घर के अंदर, भाई मैं और मेरी पत्नी और मेरे दो बच्चे रहते हैं, इतना घर नहीं है। आपके घर के अंदर जो अगर कोई पशु पाला है आपने, तो उसकी भी देखभाल करनी चाहिए उतने ही ध्यान से जितने आदमी अपने संबंधी की करते हैं। सारे जीव जो आपके अधीन हो गए हैं उनकी देखभाल करना हमारा धर्म है। इसलिए पुराने जमाने के लोग निश्चित रूप से रोज सुबह वो कीड़ी मकोड़ी को कुछ दाना डालते थे। जो रोटी घर में पहले माँ पकाती थी वो कहती थी गाय को देकर आओ, और जो आखिरी रोटी पकती थी बोलती कुत्ते को देनी। इसलिए यहाँ लिखा है कि कुत्ते को भी रोटी देनी चाहिए, लेकिन कुत्ते को घर में लाना चाहिए, ऐसे नहीं लिखा है। बहुत बुद्धिमानी से लिखा हुआ है भागवत में। और पहले एक ये भी कहावत हुआ करती थी कि हर गृहस्थी को रोज भोजन करने से पहले दरवाजे के ऊपर खड़े होकर कहना पूछना चाहिए कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा है तो भोजन कर ले फिर मैं भोजन करूं। प्रभुपाद से कोई विवाह किया, किसी ने शादी के बाद पूछा प्रभुपाद जी गृहस्थ धर्म क्या है, बोलो। बोला गृहस्थ धर्म ये है कि भोजन से पहले दरवाजे पे खड़े होकर बोलना कोई भूखा तो नहीं है, तो उसको खिलाकर फिर तुम खाना। ऐसे जब हम कहा सत्संग में बोलते हैं जो सदाचार है गृहस्थ के, तो लोग कहते हैं एक तो हम रहते हैं 10वें मंजिल पे, 10th फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर से कैसे चिल्लाएंगे कौन भूखा है। और अगर मुंबई के शहर में कहेंगे कौन भूखा है तो 50-60 लोग आ जाएंगे, कहां से खिलाएंगे। इसके पीछे परिभाषा क्या है, कोई भूखा आपको कहेगा नहीं कि मैं भूखा हूं मुझे खिलाओ। इसकी परिभाषा यह है कि एक आदमी को कम से कम जितना भोजन मिलता है उतना एक का निकाल के रोज रख देना चाहिए आटा, जो भी है। महीने में जहां आपका मन करे कि यहां आश्रम है साधु संतों का भोजन होता है, अथवा यहां गरीब आदमी को भोजन देते हैं, कहीं अन्य क्षेत्र चल रहा है, तो वहां जाके महीने में दे के आना चाहिए। ये हर गृहस्थी को एक प्रकार का, ये ऐसे है जैसे ये छत इतनी बड़ी आपने बनाई है ना, इसके अंदर 2-3 छोटे सोराख रखते हैं ना पानी गिरने के लिए, बरसात का नहीं रखेंगे तो छत गिर जाएगी, गिरती है कि नहीं गिरती। ऐसे ये छोटे छोटे प्रणाले हैं जो आप दे के आते हैं, ये आपको दबने से कितना सा पाप हमारे द्वारा होता है वो ये पुण्य करने से उस पाप का भार उतर जाता है। तो हर व्यक्ति को कैसे भी, और ऐसे अगर आदमी करना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। एक आदमी का भोजन हम निकाले, हम 15 आदमी है, 15 आदमी का भोजन निकल गया, तो इस दुनिया के अंदर भिखारी कैसे कोई आदमी दुखी नहीं रहे और लोग बहुत अच्छी तरह से सुखी रह सकते हैं। और हमारा खराब कितना होता है भोजन, अब बहुत ज्यादा हमारा खराब होता है, फेंकना पड़ता है, लेकिन किसी को देने का इच्छा नहीं करता। अभी तो ये फ्रिज ने ऐसा हमारे को बेईमान बना दिया है कि नहीं तो शाम को जितना बचता था किसी को दे देते थे, और नहीं कुत्ते को भी दे दिया, पता रख दो फ्रिज में कल खाएंगे। फ्रिज ने भिखारी को दरवाजे से बहुत दुखी करके लौटा दिया है, फ्रिज भिखारी का दुश्मन है। आदमी किसी को देना नहीं चाहता, रख दो कल नहीं परसों खाएंगे। पर अरे इतना पुराना नहीं खाना चाहिए, फ्रिज इसलिए नहीं है, फ्रिज इसलिए है कि जो नहीं पका हुआ चीज है उसको अंदर रखो, खराब ना हो सब्जी। पकी हुई चीज को अंदर रखने की जरूरत है, पकी हुई को बांट दो, नहीं बांटेगा आदमी। तो ऐसा भी मानो कि भक्त लोग सिर्फ ये भावना बनाएंगे कि एक व्यक्ति की जितना भोजन हमको अलग निकाल के रखना है, तो आपका संडे फीस सबर करना चाहे तो संडे के दिन आपके पास 50-100 आदमी का भोजन एक दिन आ जाएगा, और जितने लोग आए उनको खिला सकते हैं और किसी को परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से हमने गृहस्थियों को इसमें आगे कहेंगे कि अपनी कमाई का एक भाग धर्म के लिए रखना चाहिए। ये क्योंकि हमने रखना छोड़ दिया इसलिए देने की इच्छा नहीं होती है। तो क्या करना चाहिए, मानो ऐसे मन में संकल्प करना चाहिए कि मेरा जितनी कमाई है, कमाई का मतलब है खर्चा निकालने के बाद जो मेरा प्रॉफिट है, उसका मैं 2%, 5% धर्म के काम में लगाऊंगा। एक मन में संकल्प कर लो। अब संकल्प करने के बाद जब हिसाब करो तो मानो कि आपका महीने में 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है या साल में 1,00,000 रुपया हुआ है समझ लो, तो उसके मैंने 2% का, इसका मतलब मेरे को 2,000 रुपये धर्म में लगाने, तो 2,000 निकाल के एक तरफ रख दो। अब कोई मांगने वाला आता है, आप देखोगे इसको तो 200 रुपये की जरूरत है, 2,000 में से 200 निकाल के दोगे तो आपके जेब को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपका तो है ही नहीं, पहले आपने निकाल के रख दिया है। जो इस तरीके से अपना अर्थव्यवस्था ठीक रखता है कि एक भाग, ये तो शुक्र नीति है कि धन का 5 भाग करना चाहिए, एक भाग धर्म का और धन का होना चाहिए, कभी मुश्किल के समय काम आए इसके लिए रख देना चाहिए, अचानक एक्सीडेंट बीमारी कहीं आना जाना हो तो एक भाग धन का रख दें। एक भाग धन का इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए ताकि दूसरा धन कमाए, एक भाग धन का पब्लिसिटी में लगाना चाहिए, एक ये चौथा एक धन का भाग अपने रिश्तेदारों को देखभाल में, कभी आना है शादी में जाना है, ये भी एक भाग अलग करके रख देना चाहिए, एक भाग धर्म के लिए होना चाहिए कि धर्म के कार्यों में देना है। तो इस तरीके से अपने खर्चे के बाद, घर चलाने के बाद, ये पांच अलग भाग करके धन का रखना चाहिए तो हमारे को चिंता होगी नहीं। लेकिन हम ऐसे करते नहीं है, जब कुछ निकालते हैं लगता है मेरी जेब से निकल रहा है, तो पहले से ही उसको डिवाइड करके रख दो। पहले जमाने में आश्रम जो चलते थे वो कैसे चलते थे, मानो किसी को खेत है जमीन है, तो वो जब पुनः निकालता था तो उसमें से बारबर का हिस्सा होता था, पैसा नहीं लेता था बारबर, वो उसके 12 महीना उसके बाल बनाता था और अनाज के समय अपने भाग का अनाज लेके जाता था, और मिट्टी का बर्तन बनाने वाला वो अपना लेके जाता था, मटके वटके सारे मुफ्त में दे जाता था, साल की आवश्यकता पूरी हो जाती। ऐसे साधु संत का एक भाग होता था कि वहां 50 किलो 100 किलो 200 किलो उस आश्रम में दे के आना। तो इस तरीके से आदमी पहले हरेक को बांट के भाग, ऐसे जिस तरीके से काम करते थे, तो उसमें एक दूसरे का फिर एक दूसरे के ऊपर श्रद्धा और विश्वास था, एक दूसरे के काम चलाते रहते थे। अब तो पेपर करेंसी ने ऐसा काम कर दिया है कि लोग किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, किसी के ऊपर विश्वास रह नहीं गया है, भाई भाई के ऊपर नहीं, बेटे बाप के ऊपर विश्वास नहीं है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी इतना सारा अपना धंधा जो चल रहा है इसका सीक्रेट क्या है, कैसे इतना कारोबार हमारा चल रहा है। तो बाप ने कहा बेटा तुम छत के ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से नीचे कूदो। बोला कूदूंगा तो मेरी हड्डी टूट जाएगी। बोला चिंता मत करो, मैं नीचे खड़ा हूं पकड़ लूंगा। बेटे ने बाप का कहना माना, छत के ऊपर से कूदा, बाप दूर भाग गया, बेटे की हड्डी टूट गई, एम्बुलेंस मंगाई, अस्पताल में ले गया, 15-20 हजार रूपया खर्च करा, पट्टा भी चढ़ाया। बेटे ने बोला पिताजी आप मेरे को कहा ऊपर से कूदो, फिर मेरे को पकड़ा नहीं, मेरी हड्डी टूट गई। बोला तुमने क्या पूछा था मुझसे। बोला बिजनेस का सीक्रेट क्या है। बोले यही है, बाप के ऊपर विश्वास नहीं करना, यही बिजनेस का सीक्रेट है। 20 हजार मेरा गया था, तेरे को आज ऐसा मैंने सबक सिखाया है, तुम कभी विश्वास नहीं करना। ये आजकल के दुनिया के लोगों का विचारधारा है, क्यों ऐसा वातावरण ने बना के रखा है, विश्वास नहीं है। स्त्री को पत्नी, पति पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है, बीच में बहुत सी चीजें छुपी हुई है। सिर्फ इस झूठे नोट ने हमारा ऐसा हाल बुरा कर दिया, कुछ भी नहीं है इसमें, किसी काम का नहीं है, न इसमें खुशबू है पत्ते में, न खाने में मीठा लगता है। एक भक्त हमारा बड़ा है, बोला देखो ये माला आप डालते हो फूलों की, इससे अच्छा है कि रसगुल्ले गुलाब जामुन की माला बनाए, भूख लगे तो थोड़ा थोड़ा खाए तो सही, आदमी किसी काम तो आनी चाहिए। इसलिए कभी कभी इलायची की मालाएं डालते हैं, देखा है आपने कभी, कभी वो फ्रूट की मालाएं डालते हैं, तो वो आदमी कोई नहीं नीचे रख दिया। आप कल आए ना, कोई हम सबको माला डालते हैं ना, ये माला ऐसे करके उठा के ऐसे नीचे रख देता है। कल काजू की माला रखना, फिर उठ नीचे रख के जाए, जेब में डालेगा, इधर से उधर देखेगा भी नहीं। अच्छा हनुमान में तो फूल की माला होती है, लेकिन लोगों का जो मनोवृत्ति हो गई है ऐसी हो गई है। तो इसलिए ये शिक्षा जो ग्रस्त वालों के लिए है कि तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, कुछ अपने कमाई का हिस्सा धर्म के काम में लगाना चाहिए, और पशु पक्षी अथवा जो भी आपके चारों ओर जिनसे आप सेवा लेते हो उनको अपने पुत्र के समान देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी वैसे ही सेवा करते जैसे आपके अपना परिवार वाले करते। तो ये काम ग्रस्त के लिए अति आवश्यक है अगर वो सुख से रहना चाहते हैं। और कल बताया था प्रभुपाद ने कहा ये चार चीजें अगर गृहस्थी के घर में है तो उस गृहस्थी का घर छोड़ने के उस घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो घर ही मंदिर हो जाता है। घर में एक छोटा सा मंदिर बनाओ, भगवान को, निताय को, जगन्नाथ बलदेव को, सीताराम लक्ष्मण को, जो आपका श्रद्धा और इष्ट है उसको विराजमान कर दो अच्छी जगह पे घर में, सीढ़ी के नीचे नहीं, खिड़की के अंदर नहीं, अच्छी घर में जो जगह हो सुंदर सी, वहां भगवान का एक मंदिर स्थापित करो। अगर पूजा करने में तकलीफ होती है तो फोटो लगा दो, अगर ठाकुर जी बिठाने को तो पूजा में इतना समय नहीं है, मानो अब व्यस्त है किसी कारण से, तो फोटो लगा दो। और फिर घर में जो भी भोजन बने वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए, और एक थाली और कटोरी दो और एक गिलास जो भी है वो भगवान का लेके रखो, और एक जवान आदमी जितना खाता है, ऐसे हमारे घरों में भगवान लड्डू गोपाल रखे हैं, उसको इतना इतना मिश्री मिश्री बोलते हैं, मिश्री क्या कहते हैं, खड़ी शुगर, वो दिखाते हैं और पांच पराठा खुद खाते हैं, भगवान को इतना सा मिश्री दिखाते हैं, भगवान पराठा नहीं खाएगा ऐसे सच नहीं, एक जवान आदमी जितना खाता ना उतना थाली के अंदर पहले भगवान को अर्पण करके बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए, सब कुछ जो आपका दिया हुआ है ये प्रेम और श्रद्धा से हम आपको अर्पण करते हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। और पांच दस मिनट जो आदमी जितने टाइम में भोजन कर लेता है उतने देर के लिए रख के, और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जपे, और फिर वो प्रसाद निकाल के सारे प्रसाद में मिलाकर और परिवार को खिलाना चाहिए, तो बच्चे का मन भी अच्छा रहेगा, परिवार में प्रेम भी रहेगा, भगवान का प्रसाद सबको साथ मिला के चला सकता है। और जब भगवान को भोग लगता है और प्रसाद पाने के बीच में जो 10 मिनट रहे वो परिवार वाले सब कहें कि अब हम भोजन लेंगे, एक जगह बैठते हैं। पुराने जमाने में सब लोग भोजन के लिए बैठते थे, और सबसे गड़ी बड़ी जो घर में माता होती थी, दादी जो भी होती, वो सबको परोस के खिलाती थी, वो जब परोस के खिलाती थी तो प्रेम से अधिक अधिक खिलाने का, उसको पता था कि बच्चा क्या खाएगा, और हरेक को बिठा के खिलाती थी। जब हम साथ भोजन कर सकते हैं तो साथ रह सकते हैं, यू ईट टूगेदर यू कैन लिव टूगेदर। तो अभी क्या करते हैं, अभी भोजन की थाली डायरेक्ट उठा के किचन से, कोई टीवी के सामने बैठता है, कोई बीवी के सामने बैठता है, कोई साथ बैठ के नहीं खाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। साथ बैठ के भोजन करने से, जब 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 सिकंदर आया था भारत में आक्रमण करने के लिए, तो सामने पोरस की सेना थी, रात को अपने गुप्तचर को भेजा कि देखो देख क्या हो, पोरस की सेना का हाल क्या है, तो उसने पांच छह जगह पे आग जलती हुई देखी, किसी पूछा इतनी आग अलग क्यों जलाई है, बोला ये इनका पकाया हुआ नहीं खाते हैं, ये इनका पकाया हुआ नहीं खाते हैं, ये अलग पकाते हैं, वो अलग पकाते हैं। उसने आके सिकंदर को बोला वहां पांच छह जगहों में अलग पकाते हैं और अलग खाते हैं, बोला जो साथ खा नहीं सकते हैं वो साथ लड़ भी नहीं सकेंगे, इसलिए इनको हराना कोई मुश्किल नहीं है। और प्रभुपाद ने कहा एक जगह कहा है कि अगर हम साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं तो साथ रह सकते हैं, और हमारे सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। साथ भोजन करते हुए जो भी दिल में सारे दिन में कुछ बातें हैं वो करके सारे मसलों को जो हमारे पास जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है वो सब वहां खत्म हो जाती है। तो भोजन सब बच्चों को बैठ के प्रेम से खिलाना चाहिए घर में, माता को, दादी को, जो बड़ी हो उसको। और बीच में भोजन लगे और भगवान को भोग लग रहा है और भोजन के लिए सब बैठे, इसके बीच में बैठ के भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए इसके बीच में बैठकर, ताकि भोजन करने से पहले आदमी का मन प्रसन्न होना चाहिए। कहते हैं जब भोजन कर रहे हैं तब आदमी का मन चित्त प्रसन्न होना चाहिए, दुखी मन से भोजन करने वाले का भोजन अंदर पकता नहीं है, तो प्रसन्न मन होने के लिए पहले कीर्तन करने से आदमी का मन प्रसन्न हो जाएगा, हृदय शांत हो जाएगा, तब भोजन करेगा तो वो भोजन को भी भगवान का कृपा प्रसाद समझ के जब पाएगा तो उसके लिए वो भोजन बहुत लाभकारी होगा। तो वो कीर्तन मन को एकाग्र और शांत करने के लिए, भोजन करने से पहले भी बड़ी सावधानी से, अन्न कैसे हमारे पास आता है, कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि अन्न के रूप में, अन्न को भी कभी वेदों में ब्रह्म बोला है, उसको भी प्रणाम करते हैं। जब थाली आती, थाली को पुराने जमाने में खाने की विधि है कि आदमी अपने से थाली को ऊपर रखता है, वही चौकी के ऊपर रखी जाती थी, थाली को ऊपर रखते थे और फिर प्रणाम करके उसको कि अन्न कृपा करके भगवान का प्रसाद हमको मिला है। जैसे हम एक गाते हैं भक्ति विनोद का, भाई शरीर अविद्या जाल है, ये सारी शरीर सारा अविद्या का जाल है। अविद्या मतलब अज्ञानता का जाल है, इग्नोरेंस। शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रिय तो एक काल, जड़ इंद्रिया, ये इंद्रियां सारी जड़ है। इन सब इंद्रियों के अंदर कौन ज्यादा जड़ है? जीवा फिले विश्व सागर, ये जीवा जो है ना विश्व का सागर है। ये सबसे मुश्किल है इस दुनिया में बस में करना। हर इंद्री का एक काम है, कान केवल सुनता है, आंख केवल देखती है, लेकिन जीवा बोलती भी है और चखती भी है। चखने के लिए हमारे को बहुत बहुत जगहों पे भटकाती है, इधर खाएंगे उधर खाएंगे, उधर का गोलगप्पा अच्छा है, इधर की पानी पूरी अच्छी है, इधर का भेलपूरी अच्छी है, उधर का डोसा अच्छा है, ऐसे करके कितने की तो दुकानों के ऊपर धक्का खिलाती है जबान। ये जबान की टेस्ट की वजह से आदमी भटकता है। और बोलने के लिए जबान बहुत प्रयास करती है, बोलने के लिए कुछ भी बोलने के लिए चुप नहीं रह सकती। इसलिए सब इंद्रियों में ये जो जीभा है ये सब मुश्किल है। इसलिए इस जीभा को शांत करने का सबसे सरल तरीका है, इसको भगवान का प्रसाद खिलाने का अभ्यास करो और भगवान का नाम जपने का अभ्यास करो। भगवान की भक्ति कहां से शुरू होती है? भगवान की भक्ति जीभा से शुरू होती है। जीभा के दो काम है, बोलना और स्वाद चखना। स्वाद चखने के लिए भगवान का प्रसाद दो, बोलने के लिए भगवान का नाम, भगवान की कथा, तो फिर भगवत प्रसाद से आपकी सारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। तो जीभा को पहले वश में करने के लिए घर में प्रसाद पकना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। अब शाम को सब जब काम से वापस, अगर अच्छे से अच्छा वातावरण घर का बनाना हो, तो जैसे आजकल आप आ रहे हैं ऐसे अपने घर में अथवा चार पांच घरों के लोग बैठकर रोज एक श्लोक भागवत का पढ़ लो, सुबह 15-20 मिनट तक एक श्लोक, अथवा मनु संस्कृत नहीं पढ़ने में ऐसा मुश्किल है तो एक आधा अध्याय सरल में लिखा हुआ है तो सुबह पढ़ लेना चाहिए परिवार को साथ बैठकर, और फिर अपने काम पे जाओ सुख से भगवान को प्रणाम करके। सारा दिन काम करने के बाद शाम को आओ तो फिर हाथ पांव धोने के बाद पहले मंदिर में प्रणाम करो, फिर बैठ के शाम को थोड़ा सा भगवद गीता का 15-20 मिनट का अध्ययन कर लो। ये दो टाइम पे अगर कृष्ण कथा पढ़ते हो, और तीसरा रात को सोने से पहले दूध का गिलास शरीर के लिए जरूरी है, और भागवत के कृष्ण दशम स्कंद का एक अध्याय आत्मा का भोजन है। प्रभुपाद ने ये बहुत बड़ी सुंदर शिक्षा दी है कि सुबह का भागवत का श्रवण करो, सारा दिन अपना काम करो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, शाम को आओगे तो भगवत गीता का श्रवण कर लो, फिर भोजन करो, फिर परिवार के साथ बैठो, अपने कोई काम काज पूरे करो, सोने से पहले एक अध्याय कृष्ण परम पुरुष भगवान दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का पढ़ लो, तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। भगवान की कथाओं के बीच में सारे दिन की दुख तकलीफ बिल्कुल छोटी सी दिखेगी, दो भगवान के कथाओं के बीच में वो आपका जीवन सैंडविच हो जाएगा। ऊपर नीचे भगवान की कथा दिखेगी, सारे दिन का बहुत दुख हो उसके अंत के बीच में कचुम्बर हो जाएगा। तो ये स्पिरिचुअल सैंडविच बना देना चाहिए अपने जीवन को भगवान की कथाओं के बीच में। अभी भी 6-7 दिन से जैसे आप आ रहे हैं, ऐसे मानो दूरी है तो कोई बात नहीं, 2-4 घर साथ में है तो 2-4 घर साथ में, तो एक ही घर के परिवार के बैठ के एक पन्ना रोज पढ़ने का आदत डाल दो। ये शिक्षा हमारी सुरक्षा है, ये शिक्षा हमारे बच्चों के अंदर संस्कार डालेगी, हमारे बच्चों का चरित्र बहुत निर्माण करेगी, और घर के अंदर जो एक दूसरे से थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव है वो खत्म कर देगी। ईर्ष्या बहुत ज्यादा ईर्ष्या घरों के अंदर, ज्वाइंट फैमिली है तो ईर्ष्या बहुत होती है, उसकी साड़ी अच्छी किए हुए हैं, उसका कुर्ता अच्छा क्यों है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, उसकी अंगूठी ये दो क्यों है, मेरी एक क्यों है, ये सब शांति हो जाती है जब आदमी भगवान की कथा के द्वारा अपने जीवन को इसमें लिखा है कि गृहस्थी को जितना भगवान की कृपा से मिलता है उसमें संतोष रहना चाहिए, दूसरे के महल को देख के अपनी झोपड़ी को गिरा देना नहीं चाहिए, उसमें ही सुखी रहना चाहिए। कहा हमने कभी कहा था, अकबर को किसी ने, शहनशाह अकबर को किसी ने एक अच्छा सा शाल बना के हाथ से दे दिया, ओढ़ लिया तो शाल थोड़ा छोटा था, अगर सर के ऊपर ओढ़े तो पांव को निकल जाए, पांव के ऊपर डाले तो सर हो जाए। बीरबल, ये शाल छोटा है। बोला नहीं महाराज, छोटा नहीं है, सो जाओ मैं ढकता हूँ। सो गया। बोला जरा पांव कट्ठे कर लो। बोला क्यों? बोला जितनी शाल लंबी हो उतने ही पांव लंबे करने चाहिए, तो तुम अब ढक जाओगे। तब से ये कहावत हो गई है, जितना आपकी चादर लंबी हो उतने ही पांव लंबे करने चाहिए। तब से ये कहानी आ गई। तो जितना आपके पास है उसी के अंतर्गत आपको सुखी घर में रहना चाहिए, दूसरे को सुखी देख कर अपने घर में दुखी नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। पड़ोसी मेरा सुखी है तो भगवान न करे कभी आपत्ति होगी तो कभी काम आएगा ना। ये भी मुझसे ही ज्यादा दुखी होगा तो मैं तो पहले ही हूँ, दूसरा दुखी क्यों? ये तो भगवान इसी को सुखी रखो। ये भाव होना चाहिए कि मेरा भाई सुखी हो तो ठीक है। हम दुनिया में समझते हैं कि दूसरा कोई सुखी ना हो, मैं अकेला ही सुखी रहूं, बाकी सब दुखी हो। ये बहुत बुरी भावनाएं जो है, ये सब सद्भावनाओं में बदल जाएंगी, तब आदमी इस संसार में सुखी शांति से रह सकता है। चारों ओर आपके रहने वाले अगर यही सुबह रोज भगवान को प्रार्थना करे कि मेरा पड़ोसी सुखी हो, मेरा भाई समृद्धि करता रहे, तो सब लोग सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब हमारी कैसी भावनाएं होती है, कोई सुखी नहीं होना चाहिए दुनिया में, बस केवल हम ही सुखी होना चाहिए। ये भावना कहाँ से आ गई है? ये जब हमने धर्म ग्रंथों को छोड़ दिया है तब से हमारे अंदर ये पाश्चात्य संस्कृति की सेल्फिश भावना आने लगी। इसलिए ये हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है इसको ठीक तरह से समझने का अभ्यास करना चाहिए, तब हम दुनिया में सुखी रह सकेंगे। और आप तो लोग सब भक्त है, सदा आते हैं भगवान के नाम का, रोज निरंतर जप करने का नियम सबसे उत्तम नियम है। परिवार के लोग सुबह बैठ के साथ में जप करेंगे अगर, तो ये समझ ले कि आप रोज अपने आप को इम्यूनाइज कर देते हैं। इम्यूनाइजेशन होती है ना, इम्यूनाइजेशन करते हैं ना, कल हम गया था, वो बैठा था वैक्सीनेटर, वो वैक्सीनेशन करने वाला पोलियो के ड्राप रख के बैठा होता है। आप अपने बच्चों को ले जाते हैं कि इसको पोलियो को ड्राप पिला दो, क्यों? कि इस बेचारे की टांग टेढ़ी ना हो जाए, हाँ बीमार ना हो जाए। तो पोलियो के जो 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 वायरस है वो खत्म नहीं होते हैं उससे, लेकिन आपको बच्चे के शरीर में उस वायरस के अटैक से बचने के लिए ताकत पैदा होती है। ऐसे ही दुनिया में कलयुग का प्रभाव तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। लोग दुनिया के अंदर बेईमानी बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, भाव बढ़ेंगे, दुख तो बढ़ेगा ही, अभी कलयुग ऐसा आएगा। अगर आप भगवान का नाम जपेंगे तो आप जैसे पोलियो का ड्राप पीते हैं ऐसे अपने आप को इम्यूनाइज कर लेंगे। अब आप जब इम्यूनाइज हो जाएंगे दुख चारों ओर होगा लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये दुख है, तो आपको उस दुख का पता ही नहीं लगेगा। तो ये जो भगवत नाम स्मरण है ये अपने आप को इम्यूनाइज करना है कलयुग के प्रभाव से। तो फिर हम इस दुनिया में रहते हुए भी, दुखों के बीच में रहते हुए भी सुखी रह सकते हैं। तो ये हमको निश्चित रूप से नेम से भगवान का नाम जपना चाहिए, ये हमारा पहला कर्तव्य है। कर्तव्य क्या? ये हमारा पहला उद्देश्य है जीवन का, बाकी सब कर्तव्य, ये उद्देश्य है, ये तो हमको निश्चित रूप से करना ही चाहिए। और कुछ न कर सके तो ये तो करना ही चाहिए, रिटायरमेंट के बाद भी करना चाहिए और काम शुरू करने से पहले भी करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को जितना सरल बनाएंगे, जितना सिंपल बनाएंगे, जितना शास्त्र के अनुसार जीने का प्रयास करेंगे, उतना हम जितने दिन रहेंगे सुखी रहेंगे। जब इस संसार से जाएंगे तो भटकेंगे नहीं, 84 लाख में कुत्ता बिल्ली गधा बनने से बच जाएंगे, कम से कम वापस मानव बनने का तो संभावना रहेगी। किसी अच्छे घर में, भक्त के, किसी साधु के, किसी ब्राह्मण के, किसी धनी के घर में जन्म मिलेगा अगर हमने अभ्यास अभी से शुरू किया तो, और नहीं तो केवल पूर्ण रूप से नियम पालन करके 16 माला जबकि 4 नियम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से इस शरीर की समाप्ति के बाद भगवत धाम जाना, और वहां जाने के बाद भगवान के संग में नित्य भगवान की सेवा में लगना, जहां दुख है ही नहीं, जहां बुढ़ापा है ही नहीं, जहां बीमारी है ही नहीं, जहां आनंद ही आनंद है, उसको प्राप्त कर लेंगे, फिर संसार में वापस भटकने के लिए नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ा लाभ है थोड़ी सी तकलीफ इस दुनिया में उठाने का। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबका। अरे कोई किसी का प्रश्न है? हो गया 45 मिनट।
जो मेरे एक दोस्त है यूपी में है पूरी, उनके मामा जी ने, उनके मामा जी के जो गुरु थे वो जो अपना देश छोड़ रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि देखो देखो विष्णुदूत आ रहे हैं, मुझे लेने आ रहे हैं, तुम्हें तो भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो अभी यमदूत आ जाएगा मुझे लेके जाएगा, विष्णुदूत आए हैं तुम्हें भगवत गीता पढ़ते, कुछ समझ नहीं रहा था। फिर लोग बोले जो मर रहे आदमी है पढ़ लो, बोला मैं मरने वाला तो उन्होंने तो भगवत गीता एक अध्याय पढ़ा और वो अपना देश जाते हैं, उसको कोई समझा नहीं। अब मेरे दोस्त ने मेरे उनके मामा जी को उनको हमारे घर वाले का भागवतन दिया है, उसको पढ़ पढ़ के वो अभी 10 साल बाद समझे कि क्या बोलना चाह रहे हैं।
असल में लोग इस दुनिया में अंत समय जब मरते हैं ना, तब उनका चेहरा आप जिनने देखा है उनको देखो भयभीत होते हैं, बहुत भयभीत होते हैं अंत समय में, ऐसे करते हैं। किसी का तो वो तो दुखी होता ही होता है, चिल्लाते हैं, वो तो अपनी जगह पे मलमूत्र त्याग देते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उस वक्त जमदूत आके उनको सारी फिल्म दिखाते हैं जो कुछ उन्होंने जिंदगी में किया है, उनके पास रिकॉर्ड किया हुआ पूरा। वो जो चित्रगुप्त की डेफिनेशन क्या है, चित्र का मतलब फोटो, गुप्त मतलब सीक्रेट फोटोग्राफर है, वो सबके कंधे के ऊपर बैठा है, उसकी कैमरा की बैटरी कभी खत्म नहीं होती है, और वो सबका जो हम सुबह से शाम तक करते हैं उसका सीड पूरी फिल्म बनाता है, और मरने से पहले वो एक्शन रीप्ले करके सब दिखाता है, और हम देखते हैं ये मैंने किया था इसको पता है, तब रोना आता है, पर ये भी इसको पता है इतनी बेईमानी मैंने की थी, ये माल के अंदर मैंने कचरा मिलाया था, और ये भी दिखाया है मैं चोरी की थी, वो भी इसको पता है। तब आदमी की आंखों से आंसू आते हैं, भयभीत होता है, अरे अब तो किसी से छुपा नहीं जा सकता। और जो कथा कीर्तन किया, हरि नाम किया है, उसकी फिल्म में देखता है ये नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो उस वक्त तो विष्णु दूत उसको दिखते हैं, नहीं तो उसको यमदूत जब फिल्म दिखता है दिखाते हैं, तब उसका हाल बहुत बुरा होता है, और सबको दिखनी पड़ती है। इसलिए अच्छा काम किया होगा उस फिल्म के अंदर दिखेगा तो कम से कम आदमी अंत समय मुस्कुराते हुए जाए, मतलब यमदूत नहीं आए हैं विष्णु दूत आए हैं, और तब भगवान का नाम लेना चाहिए। एक माता जी ऐसे बैठी थी, बाहर से कोई मर गया था उसका अर्थी उठा के जा रहे थे, तो लड़के को बोला बेटा देखो तो ये स्वर्ग में जा रहा है कि नरक में जा रहा है। नहीं कैसे पता माता जी स्वर्ग में? बोला अगर मर गया है और 100-200 आदमी रोते हुए जा रहे हैं, दुख करते हुए जा रहे हैं, तो समझ लो कि स्वर्ग में जा रहा है, कि इसने लोगों को इससे लाभ हुआ है। अगर एक दो आदमी उठाने वाले भी कहते हैं कि ये गाड़ी मंगाओ इसको उठा के जाए, कौन कंधे के ऊपर उठाएगा? तो समझो नगर में दुनिया को सुख नहीं दिया तो कहां से ये स्वर्ग में जाएगा? ये लोग ही कोई इसके साथ नहीं है पीछे, तो नरक में जाएगा और क्या करेगा भाई। अच्छा काम किया होगा तो जरूर लोग दुखी होकर जाएंगे ना पीछे, कोई रोता हुआ जाएगा, कोई कहेगा बहुत अच्छा आदमी है, तो लोग समझ में आएगा कि अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी तो स्वर्ग में जाएगा, और नहीं तो जिसके पीछे सब अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ, ऐसे कहने वाले भी मिलते हैं, अच्छा हुआ मर गया, बहुत बड़ा लोगों को दुख देता था। अभी कोई डाकू मरता है, कोई आतंकवादी मरता है तो बहुत लोग खुश होते हैं ना, तो समझना चाहिए कहाँ जाएगा, ये नरक में जाएगा सीधा सा, बहुत बड़ा दंड भोगेगा। तो ये मरते समय सबको जो एग्जाम देना पड़ता है उसकी तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये हम जो अभी कथा कीर्तन कर रहे हैं ये उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये क्लासेस इसलिए लग रहे हैं कि अंत समय में हमारे मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो जाए। तो यही हमारा सारी जिंदगी की कमाई का, सारी जिंदगी की मेहनत का अंत समय में परीक्षा होगी। उस वक्त अगर भगवान का नाम मुख से निकल का तो हम पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की।
जो कंधे के ऊपर स्थान है, दो स्थान में बैठ के कोई रिकॉर्ड कर रहा है, उनके बारे में
चित्रगुप्त है ना, वो उसका नाम चित्रगुप्त है, वही वही एजेंट है यमराज का जो कंधे के ऊपर बैठा हुआ है।